તારીખ 1-8-1995 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 493 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું કલકત્તામાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 119
ચલતા હૈ સમ્યક દર્શન કે નિવાસ કે સર્વોત્કૃષ્ટ સ્થાન રૂપ જો 6 પદ હૈ परिभ्रमण करने वाले संसारी जीव को मोक्ष मार्ग पाने के लिए प्रयोजनभूत है। ऐसे ये 6 पद का विस्तार से यहाँ पत्र है। 2 पद चला है, दूसरा पद फिर से लेते हैं। पहले पद में आत्मा नित्य है, चैतन्य सत्ता का धारक है, जो चैतन्य सत्ता अपर प्रकाशक है। ऐसा आत्मा का अस्तित्व है, उस अस्तित्व के दर्शाने के उपरांत अस्तित्व है तो उसमें से 2 प्रकार निकलते हैं कि अस्तित्व क्षणिक है या अस्तित्व कायमी है। हम आत्मा हैं, हमारा अस्तित्व चैतन्य गुण वाला है, जिससे हम अपने को भी जान सकते हैं और दूसरे को भी जानते हैं। ऐसा हमारा अस्तित्व है वो कैसा है तो कहते हैं कि नित्य है। नित्य होने से यानी नित्यता का यथार्थ रूप से स्वीकार होने से किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता और सभी प्रकार का भय चले जाने से आत्मा निशंक होकर के अपने शांत स्वरूप में शांतता रूप परिणमन कर सकता है। क्यों भय चला जाता है? कि हम नित्य है तो हमारा नाश नहीं है। नित्य का मतलब ये हुआ कि हमारा नाश नहीं है। नाश नहीं है तो इसका मतलब हम मरने वाले नहीं हैं। जब मृत्यु का भय नहीं है तो फिर कौन सा भय रहेगा? जब मृत्यु का ही भय नहीं है तो और कौन सा भय रहेगा? एक सबसे बड़ा भय चले जाने से नीचे वाले सभी भय भी चले जाते हैं, नहीं रहता। इसलिए स्वानुभव के काल में जब अपना स्वरूप का अनुभव होता है तो साथ साथ अपनी नित्यता का स्वीकार भी हो जाता है। नित्यता का स्वीकार होने से आत्मा निशंक होता है, निर्भय होता है और निसंगपणे असंग रूप से अपने स्वरूप में स्थिर होने के लिए समर्थ होता है। अपने शांत स्वरूप में स्थिर चिर शांति हम क्यों नहीं ले रहे हैं? जब हमारा स्वरूप ही परम शांत अमृतमयी शांति जिसमें अनंत भरी है, ऐसा परम शांत स्वरूप होने पर भी इस शांति का हम अनुभव क्यों नहीं करते हैं? कि हमको हमारी प्रतीति नहीं है कि हम नित्य हैं। संसार में रोजाना रोजाना क्या प्रति सेकंड अनेक मनुष्य की आयु पूरी होती है। ये सबको मालूम है कि आज ये मरा कल वो मरा, इससे अपना भी मृत्यु भय सबको लगा हुआ है, उसका विकल्प नहीं करना पड़ता। देखिए अपने मृत्यु के भय का विकल्प करते हैं कभी? ये विकल्प हमको पसंद भी नहीं है, ऐसा विचार विकल्प हमको तो आता नहीं है, फिर भी निर्विकल्प रूप से ये भय सबको हमेशा हमेशा चालू है। जब तक नित्यता का भान नहीं हुए तब तक, इसलिए स्वरूप की नित्यता है। इस स्वरूप में स्थिर होने के लिए आधारभूत है, नित्यता का आधार मिलता है तो फिर कोई चिंता नहीं रहेगी। मृत्यु की चिंता गई तो सब चिंता साथ हो गई। नित्यता का आधार आने से पर पदार्थ में जो आधार बुद्धि है इसलिए वो भय छूट जाता है कि मुझे खाने के लिए क्या होगा, रहने के लिए क्या होगा, या हमारे सुख के साधन का क्या होगा, ये सब प्रकार के आधार बुद्धि और सुख बुद्धि मिट जाती है। और आत्मा निर्भय होकर के परिणमन करने लगता है। स्वरूप का भाव भाषण होने से ही सम्यक दर्शन के पहले अस्तित्व ग्रहण होता है, उसमें नित्यता का भी ग्रहण होता है। तो वहां से लेकर के फिर जीव को कहीं भी आधार बुद्धि का सवाल पैदा नहीं होगा, दूसरे की आधार बुद्धि वहां से खत्म हो जाएगी। स्वरूप की पहचान होते ही पर पदार्थ की आधार बुद्धि चली जाएगी, बिना किसी के अभी ही मैं पूर्ण हूं आता है, द्रव्य दृष्टि प्रकाश पत्र में आता है, ये खुद का वचनामृत है। एक पत्र में पूज्य श्री सोगाने जी लिखते हैं कि बिना किसी के मैं अभी ही पूर्ण हूं, मैं इतना परिपूर्ण हूं कि मुझे किसी और की आवश्यकता नहीं है, कोई दीनता नहीं, कोई लाचारी नहीं है। परिपूर्ण होने से किसी की अपेक्षा नहीं रहती, और जब अपेक्षा नहीं रहती तो उसी का नाम ही उदासीनता आएगी या वैराग्य आ गया यथार्थ, क्योंकि अपेक्षा मिट गई। अपेक्षा का मिटना ही उपेक्षा है, और यही उपेक्षा का नाम उदासीनता या वैराग्य है, और यथार्थ वैराग्य है जो स्वरूप आश्रित हुआ है। यहां कृपालु देव ने कुछ लॉजिक दिया है, प्रश्न को दोहराता हूं, तो पीछे वाले नहीं। कि मुमुक्षुता के प्रारंभ में इस नित्यता का फैक्टर है, वो किस प्रकार से मुमुक्षु को अपने परिणमन में किस स्थान में रहता है, किस प्रकार से रहता है। प्रारंभ होता है बात सत्पुरुष की पहचान हुए उसके पहले कैसे रहता है, ये बात पहचान होने के बाद कैसे रहता है, भाव भाषण के पहले कैसे रहता है, भाव भाषण के बाद कैसा रहता है, और अनुभव प्रत्यक्ष होने से कैसा रहता है। इतना लंबा चौड़ा प्रश्न है। प्रश्न थोड़ा लंबा है, मैंने एक प्रश्न में बहुत से प्रश्न है कि सारी मुमुक्षुता का प्रारंभ से लेकर के मोक्ष मार्ग में प्रवेश होता है सम्यक दर्शन से, वहां तक ये नित्यता की बात किस प्रकार से वो बात रहती है परिणमन में, अलग अलग भूमिका में, ऐसा एक प्रश्न है। तो जो प्रारंभ होता है उसमें तो उस प्रकार से प्रारंभ होता है, आप सब अपने आप में देख लीजिए कि ऐसा प्रारंभ हुआ है कि नहीं हुआ है। प्रारंभ इस तरह से होता है मुमुक्षुता का कि वर्तमान परिस्थिति मुझे संतोषजनक नहीं है, मैं इस वर्तमान मेरी हालत से असंतुष्ट होकर के उसमें कुछ ऐसा सुधार चाहता हूँ कि जिससे मुझे हमेश के लिए सुख शांति बनी रहे, चाहे तिरियंत हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे देव हो, चाहे नारके हो। बहुभाग संसारी जीवों को तो दुखमय अवस्था है, और दुख से बचने के लिए भी वो सुख का खोज करता है, लेकिन जहाँ तक उसका कॉन्सेप्ट सुख दुख के विषय में यथार्थ नहीं है, वहाँ तक इसका प्रयास भी यथार्थ नहीं रहेगा, अयथार्थ प्रयास होगा। चलो दुख नहीं हो किसी को, संसार के सभी प्रकार के कहलाने वाले सुख साधन से संपन्न हो मान लो, उसको भी मुमुक्षुता का प्रारंभ कब होगा कि जब मैं ये नहीं चाहता कि मेरी वर्तमान हालत है वो ठीक है, मुझे कुछ सुधार चाहिए, पर ऐसा सुधार चाहिए, ज़्यादा मुझे समझ में नहीं है तो भी ऐसा सुधार चाहिए कि मुझे हमेशा के लिए सुख शांति बनी रहे। जब बात हमेशा के लिए सुख शांति की है, टेम्पररी नहीं, अमुक काल पर्यंत नहीं, हमेशा के लिए सुख शांति चाहिए, तो उसमें गर्वित है कि मैं नित्य हूं, क्योंकि मैं हमेशा रहने वाला हूं तो हमेशा के लिए चाहिए। तो उसमें अनजाने में भी नित्यता का कॉन्सेप्ट आ जाता है। किसी को भी पूछ लो आप, क्या आपको सुख थोड़े काल के लिए चाहिए या हमेशा के लिए चाहिए, कोई नहीं कहेगा कि थोड़े काल के लिए चाहिए, हमेशा के लिए चाहिए। तो इसका मतलब कि मैं हमेशा रहने वाला हूं तो हमेशा के लिए चाहिए ना, लेकिन उनको स्पष्ट नहीं है, अपनी नित्यता उसको स्पष्ट नहीं है, जाने अनजाने में उसके नित्यता को स्वीकार करके मुमुक्षुता की भूमिका में प्रवेश करता है और शांति की खोज के लिए प्रयास करता है। जब शांति की खोज के लिए प्रयास करता है तो अनेक प्रकार के धर्म साधन को वो अंगीकार करता है, जो भी संप्रदाय में हो, अपने संप्रदाय में जो भी धार्मिक साधन है, क्रियाएं हैं, उनको स्वीकार करता है, उसका पालन करता है, एडॉप्ट करता है। उसमें कसाई की मंदता तो सहज सभी को होती है, क्योंकि अशुभ से छूटकर सुख में आया तो मंद कसाई होगा और मंद कसाई की शांति भी थोड़ी मिलेगी। अब तो मंद कसाई की शांति में जो फंस गया तो वही करता रहेगा, और जिसको तो मंद कसाई की शांति कायम ही नहीं है, पर किसी को भी मंद कसाई हमेशा के लिए रह नहीं सकता, तीव्र हो ही जाएगा। कसाई का ये स्वभाव है तीव्र मंद होना, कभी किसी का मंद रहता नहीं, कभी किसी का तीव्र भी रहता नहीं, तीव्र का मंद का, मंद का तीव्र हो ही जाएगा निगोद में हो तो भी। ये तो मनुष्य है लेकिन निगोद में ही तीव्र मंद होता ही रहता है। जो मंद कसाई की शांति में फंसा वो तो आत्म शांति को खोजेगा नहीं और उसको आत्म शांति मिलेगी भी नहीं। लेकिन जिसको हमेशा के लिए शांति चाहिए उसको संतोष नहीं होगा, असंतोष होगा। तो उस धर्म साधन करते हुए उसको लगेगा कि कुछ ऐसी बात रह जाती है कि जिससे मुझे हमेशा की शांति नहीं मिल रही है। तो ये इस विषय में जो भी इस विषय के तजग्ञ होते हैं, तजग्ञ मैंने इस विषय के एक्सपर्ट होते हैं, उनको खोजेगा। उस विषय के कोई एक्सपर्ट है तो सत्गुरु है जो उनको शांति का रास्ता बता सकता है। जिसने आत्मा की शांति देखी है, अनुभव गोचर की है, वो तो शांति का रास्ता बता सकता है, दूसरा बता सकता नहीं है। तो उनको समझ में आता है, उतनी बात उनको समझ में आ जाती है, जो कहीं नहीं फंसता है उसको। तो उसमें भी आगे वाला कॉन्सेप्ट तो वैसा का वैसी रहा, क्योंकि वो तो सत्पुरुष की जो खोज हुई वो खोज में तो जो पहली बात हमेशा के लिए शांति चाहिए उसी कारण से हुई है, तो वो कॉन्सेप्ट चालू रहता है। उसमें कारण वो है कि जो जीव तीव्र कषाय में प्रकृतिगत रूप से ज्यादा रहता है, प्रश्न क्या है मैं दोहराता हूं, कि जब मानसिक शांति वो चीर शांति नहीं है, क्षणिक शांति है, फिर भी जीव इसमें क्यों रुक जाता है या फंस जाता है, ऐसा क्यों बनता है, नहीं बनना चाहिए वास्तव में तो नहीं बनना चाहिए, फिर भी ऐसा क्यों बनता है। और बहुभाग जीव को ऐसा बनता है, कोई विरल जीव इससे छूटता है, इसका क्या कारण है, ऐसा प्रश्न है। तो क्या है कि संसार में जीव को चार संज्ञाएं अनादि से हैं, संज्ञा मैंने इच्छा, तो अनेक प्रकार की इच्छाएं जो चार संज्ञा के कारण से अनेक पदार्थ की, अनेक प्रसंग की, सभी जीव को सारे दिन इच्छाएं रहा करती हैं। और ये इच्छा है वो तीव्र कषाय है, पर उसमें आकुलता और दुख ज्यादा है, अशांति ज्यादा है। वो अशांति में से वो धर्म साधन करने जब लगता है, किसी ने माला फेर ली, समझो ना, ज्यादा नहीं समझे, नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो ज्ञान नमो, नमस्कार मंत्र के कोई माला फेरता है, तो माला फेरने में भी उसको थोड़ी शांति मिलेगी, क्योंकि इधर उधर की इच्छाएं वहां नहीं चलेगी। तो उनको लगता है कि नहीं, ये करना चाहिए मुझे, हमेशा माला तो जब माला का जाप तो करे ही करे, कोई शास्त्र पढ़ेगा, कोई देव दर्शन करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा। तो उसमें से ज्यादा अशांति वाले को थोड़ी भी वो अशांति कम होती है तो रुकने का कारण बन सकता है। क्योंकि उनको मालूम नहीं है कि ये आर्टिफिशियल शांति है, ये नकली शांति है, वो उनको मालूम नहीं है, तो उस विषय से अनजाना है, इसलिए वो फंस जाता है। लेकिन कोई जीव ऐसे भी होते हैं, ये तो माला छूट गई तो हमारी शांति भी छूट गई, क्या करें, अभी ऐसा नहीं चले, हमको तो निरंतर कोई भी उदय में प्रवेश करते हुए भी शांति बनी रहे, ऐसी कोई परिस्थिति हमारी बने वो चाहते हैं हम, तो वो फंसेगा नहीं, वो खोजेगा, और इसके खोज में सत्पुरुष की खोज आती है। खोज आती है तो खोजने के लिए जब तीव्रता आती है तो योग्यता आती है, यहां तक तीव्रता नहीं आती है तो योग्यता नहीं आती है। और जब सत्पुरुष के संग में जाना होता है तो बिना पहचान भी कई बातें उनको समझ में, सत्संग से समझ में मिलती है, तो उसके पहले भी ये तो बात चालू रही कि हमको हमेशा के लिए शांति चाहिए, सुख चाहिए। जब ये संग से अपनी योग्यता ठीक करके जब पहचान कर सकता है, बहुत सी बातें हैं बीच में लेकिन हम टू दी पॉइंट लेंगे प्रश्न के उत्तर में, कि जब पहचान होता है तब तो उनको आत्मा की नित्यता अच्छी तरह समझ में आती है, लेकिन वहां भी बौद्धिक स्तर से समझ में आती है, अनुभव के स्तर में वो समझ में नहीं आती है। हाँ, बहुत डिफरेंस है। जो बौद्धिक स्तर में समझ में आई है और सत्पुरुष की पहचान भी हुई है तो वो यथार्थता में आया हुआ जीव है, क्योंकि इसकी पहली भूमिका यथार्थता की चालू हो चुकी है, तो उसके लिए जब वो यथार्थता में आया है तो उसके लिए वो सत्पुरुष की आज्ञा अनुसार जो भी प्रयास करेगा तो प्रयास में वो भाव भाषण तक जाएगा, कहाँ जाएगा, भाव भाषण तक पहुंचेगा, वो वहां तक आगे वाला फैक्टर ऐसा का वैसा चालू है, क्योंकि वोक संज्ञा से तो वो आ गया कि हमें हमेशा के लिए सुख चाहिए, तो वोक संज्ञा में नित्यता का स्वीकार हुआ है, भाव भाषण में तो ये बात आई है कि वर्तमान में जो अवगुण है उसको मिटा करके हमें सद्गुण की प्राप्ति होना, जो आत्मा में गुण भरे हैं उसके प्राप्ति होना, तो उसका कुछ अंश में अनुभवान से आलंबन आता है, तब पता चलता है कि अरे ये तो परमार्थ है, परम प्रयोजनभूत है और ये शाश्वत पदार्थ है। वहाँ भाव भाषण अच्छी तरह से आता है कि मैं नित्य हूँ, अपने स्वरूप का भाव भाषण में, स्वरूप की नित्यता का भाव भाषण भी आ ही जाता है। क्यों आता है, कैसे आता है, ये विषय चला था कि अपना जो सातत्य है इससे नित्यता पकड़ने में आती है, परसों जो स्वाध्याय चला इसमें वास है। भाव भाषण कैसे आता है कि जो अपना ज्ञान लक्षण से ज्ञान 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 चल रहा है, नग 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 पढ़ा चल रहा है, वो सतत चल रहा है, उसको बंद किया नहीं जा सकता दूसरे से या अपने आप से भी बंद नहीं कर सकते। एक जानने का ज्ञान का पर्याय पूरा होता है, दूसरी पर्याय उसी काल में उत्पन्न हो जाती है, तो श्री गुरु कहते हैं कि आत्मा दूसरी पर्याय को प्राप्त करके पुरानी पर्याय को छोड़ता है, पुरानी पर्याय को छोड़ करके नई पर्याय को ग्रहण करता है, ऐसा नहीं है, नई पर्याय को ग्रहण करके पुराने पर्याय को छोड़ देगा। मतलब क्या है इसमें? ऐसा बात तो एक ही है, एक काल में होता है, एक पर्याय का अव्यय दूसरे पर्याय का उत्पाद में समयांतर नहीं है, दो समय नहीं है, एक ही समय है। फिर भी इस तरह से, इस शैली से, इस प्रकार से कहने का पीछे क्या अभिप्राय है कि तुम नित्य हो? तो नित्यता तो सातत्य का जब ग्रहण होता है, सततपना का जो ग्रहण होता है, उसमें से पता चलता है कि मैं नित्य हूं, मैं शाश्वत हूं। और ज्ञान अकषाय स्वभावी होने से मैं शाश्वत सुख रूप हूं। और मेरा जो स्वरूप मेरे भाव भाषण में आया, मेरे भाव में भाषित हुआ, उसको बाधा पहुंचाने के लिए कोई समर्थ नहीं है। मैंने मेरे सुख स्वरूप में किसी की पहुंच नहीं है कि जिसमें कोई विक्षेप हो सके, कोई बाधा हो सके। ये सब बात भाव भाषण में आई जाती है। इसलिए मैं हमेशा हमेशा के लिए सुखी रह सकता हूं और मेरा स्वरूप ही ऐसा है, ये दोनों बात का एक कॉन्सेप्ट, एक निश्चय, यथार्थ निश्चय आ जाता है। यहाँ से नित्यता का ग्रहण हुआ। कृपालु देव ने व्याख्यानुसार 1.220 नंबर के वचनामृत में वो बात कही थी, अपने लिया था उस दिन, कि अस्तित्व ग्रहण अनादि से नहीं हुआ। अस्तित्व ग्रहण कहो, भाव भाषण कहो, एक ही बात है। और अस्तित्व ग्रहण होने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, क्योंकि अस्तित्व ग्रहण सम्यक्त्व का एक अंग है। यहाँ से नित्यता का स्वीकार आया।
प्रथम तो दो पद है वो अस्तित्व ग्रहण कराने के लिए
है।
प्रथम दो पद अस्तित्व ग्रहण कराते हैं।
हाँ, पहले तो आत्मा है, उसमें तो अस्तित्व आ ही गया, लेकिन तो अस्तित्व के फैक्टर को स्वतंत्र रूप से बताना का अभिप्राय था, इसलिए वहां चैतन्य सत्ताधारी स्वपर प्रकाशक है उतना ही लिया, विशेष गुणवाचक लिया, सामान्य गुणवाचक नहीं लिया, क्योंकि यहां से वो अलग पड़ता है, भिन्न पड़ता है। आत्मा जो है वो तो कैसा है वो बता दिया पहला, और है पड़ा के लिए स्वतंत्र बात दूसरी लिया, वरना तो आत्मा है उसमें तो अस्तित्व आ ही जाता है पने में, लेकिन कैसा है वो पहले बताना है, उसमें भी बहुत गंभीरता है कि मैं हूं उतना नहीं चलेगा, मैं कैसा हूं इसकी जरूरत, इसकी आवश्यकता इसलिए है कि मैं हूं वो बात तो अज्ञान पने में भी कॉन्सेप्ट तो इसका है ही कि मुझे सुख चाहिए दुख नहीं चाहिए, तो मैं बना का तो है ही कॉन्सेप्ट, लेकिन अनजाना कहां से है कि मैं कैसा हूं वो बात का पता नहीं है। और चैतन्य सत्ता धारक स्वपर प्रकाशक हूं ऐसा कहने से भिन्न हूं वो बात उसमें से खड़ी हो जाती है। इसके पहले मैं हूं लेकिन राग वाला हूं, शरीर वाला हूं, कुटुंब वाला हूं, मेरे संप्रदाय और समाज वाला हूं, और ऐसे बहुत से लफड़े हैं, कैसा कैसा हूं उसमें। तो ये मैं अपना चोखा शुद्ध नहीं है, ये अस्तित्व का स्वीकार भी अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है? कि अन्य तत्व का मिलावट है, एडल्ट्रेशन है उसमें, कि मैं राग वाला हूं, मैं शरीर वाला हूं, फलाना शरीर वाला हूं, पुरुष शरीर वाला हूं, स्त्री शरीर वाला हूं, ये सब मिथ्या स्वीकार है, ऐसा आत्मा है ही नहीं, इसलिए चैतन्य सत्ताधारी स्वपर प्रकाशक है ऐसा लिया। अब कहते हैं कि मैं हूं ऐसा आया तो हूं बड़ा क्षणिक भी है, क्योंकि पर्याय पलटती है, जिसमें मैंपणा का अनुभव होता है वो तो पलट जाती है।
कैसे?
अगर उतना ही स्वीकार करे तो बौद्ध मत हो जाएगा। बौद्ध मत का स्वीकार पर्याय की अनित्यता से चला है, जबकि आज आज जैन दर्शन से भी ज्यादा फैलाव बौद्ध दर्शन का है। भगवान महावीर स्वामी अंतिम तीर्थंकर हुए, उसके समकाल में देखो कैसा काल आ गया, उसके समकाल में एक गौतम बुद्ध हुआ और उनके नाम से आज एक बहुत बड़ा संप्रदाय चलता है, जिसकी संख्या जैनियों से भी बहुत ज्यादा है। ये काल का प्रभाव है। काल का ये प्रभाव है कि भगवान महावीर स्वामी से जो शासन चला, जिसको हम कहते हैं कि जैनम जयतु शासनम, वो शासन कमजोर रह गया है।